पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
कर्तव्य माने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करे तो इसको अंतिम सांस तक शरीर छूटते तक जब तेरा शरीर नाश हो तब तक इसका सेवन कर। तो ये वेद ज्ञान है और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता उठा ली हमने, पवित्र वेद रख दिए, अब इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 13। हम संस्कृत पढ़ेंगे, परमात्मा ने योग्य कर दिए। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। इनका अनुवाद यहां से शुरू होता है, इन्होंने दोनों का इकट्ठा कर दिया 12 और 13 का, ये बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए था। यहां से शुरू होता, जो पुरुष ओम माने ओम, ओम माने ओम, इस एक अक्षर रूप इति एक अक्षरम अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यह अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं करना है पर थोड़ा बहुत मिला दिया, मिलता जुलता सा है। देखिएगा, अब देखिएगा हम अपने हिसाब से करेंगे इसको। अब 13वां मंत्र है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओम माने ओम, इति माने यह एकाक्षरम, ओम इति यानी यह, केवल यही एकाक्षर माने एक अक्षर ओम यही ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम जो शरीर त्याग कर जाता है सयाति परमाम गति वह परम गति यानी ओम के जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जो शरीर त्यागते समय तक भस्मांतम शरीरम यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 वाला ये जो काटो है यही परमात्मा की सुख संवेद में है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। यानी अंतिम सांस तक राम का नाम जपते रहो। अब कौन से राम का, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी उस अमर लोक को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4वें श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान रूपी इस अंधकार में इस गुत्थी को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे संसार की रूपी संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। अपनी भी साधना करने को नहीं कह रहा। यदि तूने उस स्थान को पाना है, अमर लोक को पाना है, सतलोक को पाना है और जन्म मरण का ये झंझट छुटवाना है, तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उसी भगवान की भक्ति कर जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब पवित्र यजुर्वेद, पवित्र सूक्ष्म वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में वेद ज्ञान, ये एक ज्ञान है, ये बिल्कुल सही है। अब ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक। इससे पहले थोड़ा सा आपको देवी पुराण दिखाऊंगा। पुण्यात्माओं, आप जी ने बहुत दिन सुन लिए राम कृष्ण और सुदामा की कथाएं, वो तो अच्छी बात है। धार्मिक व्यक्तियों को कोई ना कोई सहारा चाहिए था, हम उसमें लगे रहे। लेकिन अब जब बच्चे सयाने हो जाएं, तो वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो आजीवन पहली का कैदा नहीं पढ़ना चाहिए उन्होंने। अगर सफलता पानी है तो आगे की क्लासेज भी अटेंड करनी पड़ेंगी। तो वो सतलोक आश्रम बरवाला में उसे आगे की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो सुनिएगा। अब ओम नाम किसका है, ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है, ये देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप संक्षिप्त केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके मुद्रक और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। उसमें क्या वर्णन है कि देवी यानी दुर्गा जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और वो कह रही है कि आप मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म की उसका ओम नाम है। ओम नाम का जाप ब्रह्म पाने का उद्देश्य करके करोगे तो आप ब्रह्म लोक में चले जाओगे, ब्रह्म के पास जो ब्रह्म लोक में रहता है। देखिएगा, यह है 562 पृष्ठ संक्षिप्त देवी भागवत। हम नीचे आते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, ये तो पहले अपने विषय बताती है, फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। उसने किसी भी प्रजा को उसका ज्ञान नहीं है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्मा, इस परमात्मा के द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद रूपी पैमाने से आप इन सभी देवी और देवताओं के ज्ञान के सत्र से परिचित हो जाओगे। अब ये देवी जी ब्रह्म को कहीं अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं परम अक्षर कह रही है। देखो, और फिर गीता से प्रमाणित करेंगे आपको कि सर्वपुरुष अलग है, अक्षर पुरुष अलग है और परम अक्षर पुरुष वो सुप्रीम पावर है। यहां देखिए, वही अक्षर ब्रह्म है। देवी जी कह रही है ब्रह्म को, कह रही है ब्रह्म ही अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह है यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य, उस बेधन योग्य लक्ष्य को तुम बेधन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम ज्यादा ना करें, यहां के क्या करिए, अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर बेधन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष जीवात्मा बाण है, ब्रह्म और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। अब यहां कहती है उस एकमात्र परमात्मा को यानी ब्रह्म को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी कह रही है मेरी भी पूजा छोड़ दे तू। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। इस आत्मा का, परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। ओम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। और वो कहां रहता है ब्रह्म? वह है, अब 563 पर पढ़ रहे हैं, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्म लोक में रहता है। ठीक। अब श्रीमद देवी भागवत में देवी जी ने स्वयं बता दिया, ओम का जाप कर यह ब्रह्म का मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा, वो वहां रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर है। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता, हमने अब उठा ली, श्री देवी पुराण रख दी। ये 8वां अध्याय, ये 8वां अध्याय, और इसका हमने 12-13 पढ़ लिया। देखिए 16 में, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या देता, प्रमाण देता है कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ये पुनरावर्ती को स्टार लगा के या नीचे विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावर्ती उसको कहते हैं, जो उसको प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में सदा रहे, आना पड़े वापस, वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं ब्रह्म लोक में। अब यहां इन्होंने थोड़ी सी गलती की है, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत किया इन्होंने। देखो पुण्यात्माओं, यदि ये ऐसे विद्वान होते तो मुझे क्या जरूरत थी इनके मत्था पचाई करने की। अगर हम इनके इस अनुवाद को श्रेष्ठ माने कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ये कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर फिर किसी का जन्म मृत्यु नहीं होगा, तो गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2, तीन गलत हो जाते हैं, जिनमें यह कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो एक खाकनवाद इनका, इसका अर्थ यहां पर यह बनता है कि जो ये नहीं जानते अर्जुन, विद्यते माने विद धातु से बना है विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्यते माने नहीं जानते कि ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावर्ती में हैं, तो वो लोग मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह बनता है, इन्होंने गलत किया है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 को आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 12, इसमें कहा कि अर्जुन ने तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी तेरी मेरी तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। फिर देखिए अब 4 अध्याय के 5 और 9 में, ये है श्रीमद् भगवत, ये है 4 अध्याय और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय 4 अध्याय का 5वां श्लोक। अब यहां इसका अनुवाद है, हे प्रंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अब देखिए नौ में क्या कहा है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य माने अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता और मुझे ही प्राप्त होता है। अब यह यू क्या कहता है कि जो इसका सीधा सा अर्थ है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, यानी और जो इनको नहीं जानता वो मुझे ही प्राप्त होता है, जो इस तत्व से परिचित नहीं है वो मुझे ही प्राप्त रहता है और मेरे और तेरे जन्म मृत्यु बहुत हो लिए। सीधी सी बात है। अब दसवें अध्याय का दूसरा श्लोक कति कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ये देखिएगा दसवां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, ये यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को प्रभाव माने जन्म को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ज्योत निरंजन काल है, सर्वपुरुष है। इसका जन्म परमात्मा कबीर जी से हुआ, एक अंडे में उसके वचन शक्ति से एक आत्मा उसमें प्रवेश हुई, तब ये परमात्मा के वचन से इसका जन्म हुआ। और इस ज्योत निरंजन से और दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु महेश और सब अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो ये कह रहा है कि मेरे जन्म को न देवता जानते ब्रह्मा विष्णु महेश, न ये ऋषि जान सकते, क्योंकि ये मेरे से जन्मे हैं। तो जैसे पिता की डेट ऑफ बर्थ संतान नहीं जानते, पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादा बता सकता है। तो सबके जो दादाजी, सबके जनक कबीर परमेश्वर जी ने आकर हमें बताया है इसके जन्म को, और जो आज दास ने आपके सामने खोला है। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता का जन्म हुआ है और मृत्यु ये स्वीकार कर ही रहा है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये अनुवाद इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता और ब्रह्म लोक में गए हुए सबकी पुनरावृत्ति होती है। तो देवी भागवत में गीता पुराण तो उस देवी ने स्पष्ट कर ही दिया है कि ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो और वो ब्रह्म लोक में रहता है। बस तो ब्रह्म का जाप ओम मंत्र है, ब्रह्म लोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट भी कर दिया है। देखिए गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्म लोक तक गए हुए सब लोग पुनरावर्ती में है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। पुनरावर्ती माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे उनको पुनरावर्ती कहा है। यहां कहा है ना परंतु, हे कौंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत है। इसको देखिएगा ये 16वां श्लोक संस्कृत देखें। आप ब्रह्मनाथ ब्रह्म लोक पर्यंत लोका यानी सभी लोक उसमें गए हुए पुनरावर्ती न, वहां गए हुए सभी लोकों में ब्रह्म लोक तक जितने लोक हैं सब में पुनरावर्ती होती है, वहां गए हुए प्राणियों का जन्म मृत्यु होता है। अर्जुन माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विदते, इसका अर्थ है न विदते, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्म लोक तक गए हुए सभी प्राणी पुनरावर्ती में, उस जो ये नहीं जानते अर्जुन माम उपेते मुझे प्राप्त, तू माने मुझे प्राप्त होकर भी कौनते पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म होता है। ये इसका यथार्थ अनुवाद है। इनके अनुवाद को यदि माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होते, तो ये तीन गीता जी के तीन श्लोक रिजेक्ट हो जाते हैं। वो सही है, ये गलत है। क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार करता है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, तू नहीं जानता और तेरे भी होते हैं। तो अब हम आते हैं, ये स्पष्ट हो गया कि जो ज्ञान हमारा सूक्ष्म वेद इन सब का एक सबको जांचने का पैमाना है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद आज तक कोई जाना नहीं इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, जिनके शुभ नाम दास बहुत बार आपको गिनाता है। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक जो माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले थे उनको छोड़कर, और उसके बाद इस दास के अतिरिक्त इन गुड़ रहस्यों को जानने वाला इस पृथ्वी पर नहीं था। और उनको हिदायत थी कि अभी इनको और उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी कि अभी यह सार्वजनिक ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कितबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान और सार नाम को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये काल के सारे पंथ ना मिटे तब तक इसको छुपा के रखना। और बिचली पीढ़ी यदि ये पहले सार्वजनिक हो गया तो मेरा दास आवेगा, वो कैसे भिन्नता बताएगा। तो सभी महापुरुषों को, नानक साहब जी को भी यही कह दिया था कि इसको, इस मंत्र को भी किसी को मत बताना। अब ये तो स्पष्ट हुआ, ये प्रमाणित हुआ कि सूक्ष्म वेद वो तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32, इसको भी थोड़ा निर्णय करेंगे आज, इसका चौथे अध्याय का 34वां श्लोक ये देखिएगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32, इसमें क्या लिखा है? एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, यो ब्रह्मणे मुखे, यहां गड़बड़ कर रखी इन्होंने अनुवाद में, कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने अनुवाद कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के, यानी ये पहले जो बताए हैं 25 से लेकर, ये 25 से लेकर 30 तक का जो ज्ञान पहले बताया इसने, ये चौथे अध्याय का चौथा अध्याय और 25वें श्लोक से इन्हें शुरू किया है कि दूसरे अपने माने कुछ दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान बलि भारती अनुष्ठान किया करते हैं, कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म अग्नि, ये परब्रह्म नहीं ब्रह्म की पूजा करते हैं, और कुछ आत्म यानी अपने आत्म चिंतन ही करते रहते हैं, और कुछ कान आदि इंद्रियों को रोक राख के संयम कर करके हठ योग करते हैं, कुछ हवन किया करते हैं, कुछ वैसे ही का सब शरीर में शब्द सुनते रहते हैं। और 27 में फिर कहा है कि दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग में अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ ऐसे कहते हैं कि बस आंख बंद करके बैठ जा और सांस बाहर आ उस पर ध्यान रख, अंदर जा उस पर ध्यान रख, ये उनकी साधना है। सांस पर ना ध्यान करेगा तो विवाद आ रहा है, सांस को तो सिमरण करना है उस मंत्र के साथ। तो यहां देखो 28 में क्या कहा है कि कुछ कई प्रकार के द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, जैसे भंडारे कर दिए, कांबल बांट दिए, कुछ तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं और कुछ योग करते हैं, केवल योग अभ्यास। जैसे कुछ ये देखो टीवी का ऊपर न पैर कर लिए तले न स्वर्ग, नहीं देर तो खड़े रहे, को पेट न घुमा घुमा कति इससे काम लागे रहे हैं, कुछ इससे भक्ति समझते हैं। अब आगे देखो चौथे जाए, हम 28वां पढ़ रहे हैं, यहां से योग रूप करते हैं और कुछ अहिंसावादी तीक्ष्ण वर्तों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। कुछ तो अहिंसावादी तीक्ष्ण वर्त, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना, सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना, इस तरह की ये जो करते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं और कुछ स्वाध्याय करते हैं, गीता का पाठ कर लिया, वेदों के कुछ मंत्र पढ़ लिए, जप जी की का जाप कर लिया। कति सभी के सभी अपने और दूसरे कितने योगीजन अपान प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी प्राण ये योगी क्रिया करते हैं, प्राणायाम आदि करके और अपने आप को रिलैक्स महसूस कराते हैं, बस यही भक्ति है। तो ये प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं और अन्य कितने ही नियमित आहार यानी अल्पहार करते हैं, एक बार खाना खा लिया, सारा दिन में एक रोटी या केवल दूध पी लिया, प्राणायाम प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, यानी सांस मध को देखते रहते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि ये सभी जो क्रिया कर रहे हैं, ये अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, इसलिए कर रहे हैं। जब इनको पता चल जाएगा तो डड़े ढो रहे हो तो कौन करेगा इनको, कोई भी जो साधना कर रहा है उसको सही मान रहा है तभी तो कर रहा है। अब आपको पता चला, आपने त्याग दी तुरंत, नहीं तो पहले आप इसी ने फाइनल मान रहे थे जैसी भी साधना कर रहे थे, इसका ये अर्थ है। अब 32वें श्लोक पर आते हैं हम, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक देखिएगा, अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर 32। इसमें कहा है कि इस प्रकार, इनका अनुवाद पढ़ते हैं, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, नहीं ये लिखना था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुख माने मुख कमल से जो बोलता है, ब्रह्मणे माने क्या है ये दिखा, अपनात्मा गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, किसी को भी कख पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का, और बने बैठे थे मैं ऋषि मुरलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य, अपना जीवन नाश करा, हमारे पूर्वज डबो दिए, भूत बनवा दिए। अब ये दास बताएगा आपको ज्ञान, देखिएगा अध्याय नंबर 17 श्रीमद भगवत गीता और 23वें श्लोक में, ओए ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ है, तिर्विध है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। 23 नंबर इसमें अनुवाद सही किया इन्होंने, ओम ओम तत् तत् सत सत, तत् और सत का इन्हें सपने में बिना पता लग गए। अब ये गूढ़ रहस्य है, आज का जो सत्संग है विशेष होगा आपके लिए। ये ओम तत् सत ये तीन मंत्र हैं किसके, ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, ऐसे ये त्रिविध है तीन प्रकार का ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। तो ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, सचिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म। अब देखिए यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेगा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, उसके पश्चात जो जरा और मरण से छूटने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, तो वो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से और सारे दातों से और सब कर्मों से परिचित है। आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, फिर वो तत्ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञान दाता ने तीसरे श्लोक में आठवें अध्याय में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये सातवां अध्याय 29वां श्लोक, ये केवल मूल पाठ है। इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के लिए, माम आश्रिता यतंती ते, मेरा इस ज्ञान का आश्रय कर लेते हैं कि तत्वदर्शी संत को खोज ले। उसके खोजने के बाद ये ते जो खोज लेते, ते माने वे ब्रह्म तत्विदु, तत्ब्रह्म माने उस ब्रह्म को जानते हैं, दर्शनम अध्यात्म कर्म च अखिलम, के सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। अब इनका अनुवाद देखते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, यह जरा मन लिखना था वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे ते माने वो व्यक्ति तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म, तत् माने उस ब्रह्म माने ब्रह्म यानी काल को, संपूर्ण अध्यात्म को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब यहां अर्जुन ने पूछा, आठवां अध्याय सामने है, बिल्कुल एक श्लोक और बीच में है तीसवां, इसमें कोई विशेष नहीं कहा कि जो मुझे जानते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, बस अंतकाल में मुझे ही जानते हैं और मुझे ही जानते हैं, बस मेरे तक ही उनकी बुद्धि सीमित है। फिर यहां आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्चते, वह तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर इस 3 में दिया है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। अपुनात्मो, आपकी PhD करवा दूंगा और अंगुलियां बनोट करवा दूंगा सारे शास्त्रों के श्लोक मंत्र, चाहे ब्रह्मा जी और विष्णु आजी हो आपके सामने, चाहे शिव जी आजी हो, सबके ज्ञान में प्रस्त कर दोगे उनको। अब देखिएगा श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 में आगे, इसमें कहा है कि इस प्रकार यानी जो 25 से 30 तक बताया है उससे ऐसे इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, सत्पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसको कबीर देव कहो, वो कबीर परमात्मा सह शरीर सतलोक से चलकर आता, ये वेद बताते हैं कि अपने मुख कमल से वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो सचिदानंद घनब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है जो भगवान खुद बोलते हैं अपने मुख से। और इसमें मूल पाठ में संस्कृत भी स्पष्ट करती है, ब्रह्मणे मुखे, मुख माने मुंह मुख, और ब्रह्मण माने सचिदानंद घनब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। देखो अब चौथे अध्याय का 32वां श्लोक आपको 10 अनुवाद करके समझा रहा है, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर के मुख से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू ये कहता कर्म जान, मन इंद्री और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान है। कर्म जान माने परमात्मा जो ज्ञान देगा सूक्ष्म वेद में, वो क्रियाएं काम करते करते करनी होती हैं, शारीरिक क्रियाओं को काम करते करते उसका सेवन और ध्यान भजन करना होता है। कर्म जान यानी मन इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान वो ऐसे होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से तू सर्वता मुक्त हो जाएगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि सूक्ष्म वेद वो है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है। वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से सह शरीर आता है गति करके और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं यथार्थ ज्ञान, और कवियों की तरह आचरण करते हुए वो गूढ़ रहस्यों और गुप्त मंत्रों को आविष्कृत करते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में आपको बताते हैं, ये है गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34। उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलते हैं वो ज्ञान तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से परिणिपातेन और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, वे परमात्म तत्वों को जानने वाले तत्वदर्शनी वह तत्वदर्शी संत विद्वान ज्ञानी माने विद्वान पुरुष तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो तत्व ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है, वो कैसे आता है ये थोड़ा सा ऋग्वेद को भी साथ लेंगे हम। देखिएगा ऋग्वेद 9-10 मंडल ये इकट्ठे ही अनुवादित है। ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षिदान भवन राम लीला मैदान नई दिल्ली से, और ये यहां से छपा है। अब इसके हम थोड़े से श्लोक पढ़ेंगे, घना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26। इसमें क्या कहा है? इसमें जो कबीर शब्द है, ये कबीर लिखते हैं, हम कबीर बोलते हैं इसको। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, उनका नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में यानी तेजोमय शरीर वाले परमात्मा कबीर दे। ये कबीर शब्द है, कबीर हम इसको कबीर बोले, वह को इन्होंने ये अपसर्ग लगा के ऐसा कर दिया, रिष्कार कर दिया, सर्वज्ञ कवि बना दिया और कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कोई कवि आज तक सर्वज्ञ हुआ है? इनकी अकल मारी जा रही। अब देखना, अब पहले ये निर्णय करते हैं कि जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखो ये यजुर्वेद है और इसके अपसर हटा कर ये र यहां लगा दें दो और वेद अलग कर दें और यजु लिख दें और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और केवल यजु लिखा हो तो अनुवाद करता बुद्धिमान उसकी बुद्धि सलप नहीं करेगी तो वहां करेगा यजुर्वेद लिखेगा। ऐसे ही जहां कबीर भी लिखा है इन्होंने अपसर्ग लगा के तो इसके अनुवाद में लिखना पड़ेगा कबीर देव। हम उसने कबीर देव के बोले कबीर देव कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, वेदों को हम वेद बोलते हैं। किसी का नाम धर्मवीर है तो हम उसको धर्मवीर बोलते हैं, किसी का नाम वेद प्रकाश है तो उसको वेद प्रकाश बोलते हैं। तो यहां सिर्फ एक भाषा के बोलने का अंतर है और भगवान का नाम वही है। इस यजुर्वेद से करते हैं स्पष्ट आपको, ये महर्षि दानंद का ही अनुवादित है। ये देखिएगा, ये है प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा ये सारा, और ये अनुवादक और ये प्रकाशक। अब इसके आते हैं हम 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 63वां अध्याय 36वां अध्याय, और इसमें मूल पाठ के अंदर एक यजु शब्द है। ये यजु शब्द है, रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है ओनली। ये यजुर्वेद की महिमा है यहां पर, तो यहां पर इस महर्षि दानंद ने ठीक अनुवाद कर दिया। यहां देखो ये इसी का अनुवाद है, ये लिखता है वाणी की प्रेरणा को प्राप्त हो मनन करने वाले अंतःकरण के तुल्य यजु माने यजुर्वेद को प्राप्त हो। तो यहां यजुर्वेद की महिमा थी, बेशक यजु लिखा था तो इन्होंने यजुर्वेद लिखना पड़ा। अगर यजु भी लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि उसको समझाने के लिए यजुर्वेद लिखना पड़ेगा कि यजुर्वेद के विषय में कहा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं इस ऋग्वेद के ऊपर। ये वहीं से प्रकाशित, आपको ये यहां से, ये इसके प्रकाशक हैं वही जो, और ये यहां से ये प्रकाशित है। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। ये देखो 26, यज्ञ करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है हुआ, उनके विघ्नों यानी संकटों का नाश करता है, मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, परमात्मा का वहां सतलोक में शरीर की शोभा इतनी है, एक रोम में एक बाल में रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है और पूरी बॉडी का कितना हो गया, मनुष्य दृश्य है परमात्मा। तो अगर वो एज इट इज यहां आ जाता हमारी आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते। तो अपने उस रूप को हल्का तेज पुंज का सरल करके और सिंपल बनाकर आते हैं, और यही गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज तन दे धरके, इस विध हमको भेंट ही इस तरह हमें मिलते हैं। अब देखिएगा, अपने रूप को और सरल करता हुआ वह कांति में माने तेजो में शरीर वाले परमात्मा कबीर देव, यह हम इसको करेंगे कबीर देव, कबीर साहब, ये कबीर परमात्मा कबीर देव लिखेंगे हम इसको, नोट सर्वज्ञ, वो कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय माने वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वर्णीय माने अच्छी आत्माओं को, आदरणीय श्रेष्ठ आत्माओं को वो परमात्मा आकर मिलता है। और वो कहां रहता है, देखो यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में स्पष्ट है कि जो परमात्मा धूलोक के यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओहो वहां बैठा है वो परमात्मा, साकार है। आगे देखो, अब दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, 82 का, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहां पर है। इसमें कहा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु सोम माने सबका उत्पादक परमात्मा प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला सब पापों का नाश करने वाला है, वह है राजेव, राजेव माने राजा के समान, राजा के समान राजेव, ये यहां राजेव है, राजेव राजा के, यहां देख लो 269 पृष्ठ पे और ये दिखाएंगे 270 पृष्ठ पे, कोई जो ना कहे जब पृष्ठ गुना बदल गए होंगे, 270 पृष्ठ पे राजेव माने राजा के समान, ओए होए राजा के समान दर्शनीय है, वो देखण में राजा की तरह है, सिंहासन पर बैठा है, आपने परमात्मा के द्वारा बताई हुई वाणी से धर्मदास जी ऊपर देख कर आए थे, वो कल आपने एक सत्संग में सुना भी था कि वहां परमात्मा का एक सिंहासन है, सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, उसके सिर पर मुकुट है, यही गरीबदास जी कहते हैं। अरस कुरस पर आसमान के अंतिम छोर पर अर्श को उस पर सफेद गुमज है जहां परमेश्वर का डेरा। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, वो भी ध्यान से सुनना।
सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या शुभ नाम है आपका?
संजीव दास।
कहां से आए?
गांव जवा, जिला बुलंदशहर, यूपी से।
संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले कोई और भक्ति करते थे?
मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था पहले, और राधा स्वामी पंथ में मैं 2008 में जुड़ा था। मैं अपने गांव में भजन कीर्तन प्रोग्राम कर लेता था, तो राधा स्वामी वालों ने मुझसे कहा कि तुम हमारे गुरु से नाम ले लो, तो मैंने उनके कहने के अनुसार उनके सत्संग में आना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, भक्ति भी बेकार होती है, तो मैंने कहा ठीक है नाम ले लेंगे। तो वो मेरे को दिल्ली लवा के ले गए, कृपाल बाग जब मैं गया तो वहां उन्होंने जो उनके पांच नाम ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहं सतनाम, ये पांचों मंत्र उन्होंने ऐसे पांडाल में लाउड स्पीकरों के माध्यम से दिए, तो मैं उन मंत्रों को जाप करता रहा, और मेरे को उन मंत्रों के जाप करते करते 4 वर्ष हो गए, और उन 4 वर्षों के समय के अंदर मेरी छाती के आर पार यहां और पीछे तक पार दर्द होने लगा उस साधना को करते करते। और मैं ऑल इंडिया जिसको एम्स बोलते हैं, दिल्ली में सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां भर्ती कर दिया उस दर्द में। वहां दर्द में डॉक्टरों को कुछ मालूम नहीं हुआ कि किस कारण से दर्द हो रहा है, सारी इको ईसीजी एमआरआई सारी जांच करा ली, लेकिन दर्द की तय नहीं कर पाए।
राधा स्वामी पंथ में आपने कौन से संत से नाम उपदेश लिया था?
मैंने संत राजेंद्र जी से नाम लिया था।
संत राजेंद्र जी ने आपको क्या भक्ति प्रदान की?
उन्होंने मेरे को यही पांचों नाम दे दिए जिनको घट रामायण के 27 पृष्ठ की तीसरी लाइन में संत तुलसी साहेब हाथरसी वालों ने उनको पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन संका आनो ऐसा कहा है, वो पांचों काल के नाम मेरे को दिए, और उन्हीं पांचों काल के नामों के कारण मेरे को ये दर्द प्रारंभ हो गया, जबकि भक्ति से तो दुख कटना चाहिए था और मेरे को दर्द दुगना हो गया।
तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में मैं मेरे गांव के एक भक्त चुन्नी लाल दास, उनके छोटे भाई भी यहां आए हुए थे, परमात्मा की शरण में नाम लिया हुआ था, तो उन्होंने मेरे से एक दिन कुछ बात की। मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप सत्संग सुना देते हो ब्यास गद्दी पे, राधा स्वामी की गद्दी पे बैठ के सत्संग प्रवचन कर लेते हो, लेकिन आपको कोई सतगुरु नहीं मिला, आप ज्ञान देते हो लेकिन गुरु नहीं मिला आपको। मुझे उसकी बात का थोड़ा सा बुरा भी लगा कि उसने ये क्या कहा। मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं है। एक दिन कुछ व्यक्ति राधा स्वामी मिशन के बारे में ऐसी कुछ बातचीत चल रही थी, तो वहां कबीर परमात्मा के बारे में कुछ ऐसी बात आई। मैंने अनुराग सागर पुस्तक कम से कम 2-3 बार पढ़ी हुई थी, तो उसके बारे में ऐसी बात चली तो मैंने कह दिया कि उसमें पूर्ण परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर है। तो उन्होंने एक मेरे को पुस्तक दी परमात्मा की कि तुम ये पुस्तक पढ़ना। मैंने धरती पर अवतार पुस्तक उनसे प्राप्त की, और मैं दूसरे गांव में प्रैक्टिशनर डॉक्टरी का काम करता हूं अपने पड़ोसी गांव में, तो वहां मैंने वो किताब सारी पढ़ी, एक एक पृष्ठ पढ़ा, सारे शब्द पढ़े उसके, राधा स्वामी पंथ के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी उसमें, और मैंने अपने उसमें अब तक ये चीज देखी भी नहीं थी जिस राधा स्वामी मिशन से मैं जुड़ा हुआ था कि इसकी जड़ कहां से है, क्या है इसकी, इसके गुरुओं की क्या औकात है, क्या इनके पास मंत्र हैं। बस मेरे को दिए पांचों नाम दे दिए, उनको जपता था। तो जब मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें स्वामी शिवदयाल जी जो राधा स्वामी मिशन के प्रवर्तक बताए जाते हैं, लेकिन उन्होंने राधा स्वामी मिशन चलाया नहीं था, ये परमात्मा की शरण में आके मेरे को जानकारी हुई। उसमें तो अनामी और सतनाम पंथ चलाने के लिए राधा स्वामी ने वो दे रखा था, और ये राधा स्वामी मिशन अपने आप इन पंथ वालों ने चलाया है। तो मैंने जब वहां ये चीज पुस्तक में पढ़ी तो मेरे को ये चीज मालूम हुई कि तुलसी साहेब जो उन्होंने पांचों नाम काल के बताए हैं, और हम उन्हीं की साधना कर रहे हैं और उन्हीं से हमको ये दुख मिल रहे हैं, और परमात्मा के नाम लेने से तो दुख कटते हैं और यहां दुख आ रहे हैं। तो मेरे को कुछ ये बात उन गुरुओं की जो है दिमाग में खटकने लगी कि ये तो गलत रास्ता है। उसके बाद में फिर मैंने और वो किताब पढ़ने के बाद में दूसरी किताब पढ़ी सचखंड का संदेश, उसमें भी ऐसे प्रमाण दिए हुए थे सारे वर्णन, राधा स्वामी मिशन की पूरी जानकारी दी थी। तो मैंने देखा कि इसमें सारी सच्चाई लिखी हुई है, उनका जो राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक जिसको शिवदयाल जी बताते हैं उसका, उनकी जो पुस्तक है जीवन चरित्र में ये बताते हैं कि उसका कोई गुरु नहीं था और उसने 17-17, 18-18 घंटे कोठरी में अकेले बैठ के हठ योग किया था जिसका किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। और हमको भी वो 2.5 घंटे भजन करने के लिए कहते थे। अब सुबह शाम आदमी काम करके 2.5 घंटे बैठ के कौन भजन करेगा, तो हम थोड़ा बहुत जितना होता था कर लेते और सत्संग में रविवार को चले जाते थे। लेकिन वहां हमारा जो आत्मिक संतुष्टि थी वो हमको संतुष्टि नहीं मिली। फिर जब उसमें और आगे पढ़ी सारे, उसमें वर्णन दे रखे कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, ये गुरु ऐसा बताते हैं और परमात्मा कहते हैं कि जब तक गुरु मिले ना सांचा तब तक गुरु करो 10-5। तो हमने देखा कि ये तो कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, जैसे पतिव्रता स्त्री को अपना पति परमात्मा मान के किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऐसे ही अपने गुरुओं के बारे में बताते थे। लेकिन हमने जब परमात्मा की वाणी में ये शब्द सुना ज्ञान गंगा इन सारी पुस्तकों में, तो ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा कबीर देव हैं और वास्तविक भक्ति मार्ग जो है कबीर पंथी है उसी में सत्य भक्ति मार्ग मिल सकता है। तो उसके बाद में जब सारी पुस्तकें पढ़ ली मैंने, उसके बाद में मेरे को किसी ने कहा कि तुम वहां चलो आश्रम, तो मैं परमात्मा की शरण में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव के अवतार रूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं आया और मेरे छाती के आर पार जो दर्द था मैंने यहां आके नाम लिया और परमात्मा से प्रार्थना की कि परमात्मा मेरी छाती के आर पार दर्द रहता है, तो परमात्मा ने अपने मुख कमल से कहा कि ठीक हो जाएगा। मैं उन पर विश्वास करके चला गया। फिर घर जाके मेरे से एक हमारे देवराज भगत जी हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो छाती में दर्द है उसके लिए परमात्मा के इन नंबरों पर जो हमारी भक्ति बोध में ज्ञान गंगा में सारी पुस्तकों में दिए हुए हैं उन पर कॉल करो और परमात्मा को अरदास लगाने के लिए ऐसे बोला था। मैंने यहाँ आश्रम में कॉल की तो आश्रम में उन्होंने बताया कि 10 बजे कॉल करना और फिर शाम को जवाब ले लेना। मैंने अपनी सारी बातें लिखवाई कि ऐसे ऐसे मेरी छाती में दर्द है और इसके लिए मैंने कॉल की है और मैं नामदान अभी लेके गया हूँ इसी महीने। तो उन्होंने की कि शाम को 5 बजे पूछना। शाम को 5 बजे मैंने कहा, पूछा फोन करके, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी अरदास लग गई है और आपको अखंड ज्योत जलवानी है। तो मैं बोला ठीक है, जो परमात्मा ने जैसा बोल दिया वो मुझे स्वीकार है। अपने दुख के लिए जब हम ऑल इंडिया तक काफी रुपए खर्च कर चुके थे, परमात्मा के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं हम। तो जब यहाँ आए परमात्मा की शरण में दूसरे महीने तो बिल्कुल ठीक आए, शरीर जैसा फूल रहता है ऐसा फूल की तरह शरीर रहने लगा मेरा बिल्कुल। और उसी दिन से जब सारे सदग्रंथ पढ़ लिए जो परमात्मा के दरबार में तीनों पुस्तकें हैं, धरती पे अवतार, ज्ञान गंगा और सचखंड का संदेश, ये सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी चुका था। मैं यहाँ आने से पहले ही पहले सारी पुस्तक पढ़ चुका था। ज्ञान मैंने देख लिया था, उसमें कबीर साहब की काल से वार्ता 141 पृष्ठ पर लिखी हुई है वो मैंने पढ़ ली थी कि ये 12 पंथ काल के चलाए हुए हैं, इनमें भक्ति का कुछ भी लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको ज्ञान गंगा में सारे सदग्रंथों में चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, सत कबीर सागर, सारे सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति मार्ग जो परमात्मा ने बताया है वो ये यहाँ इसी बरवाला आश्रम में वो भक्ति मार्ग चल रहा है। और इस विश्व के अंदर किसी भी आश्रम में या किसी भी सतगुरु के पास वो भक्ति का ज्ञान भी नहीं है। ये मेरे को ज्ञान गंगा और सारी पुस्तकों पढ़ने के बाद में ज्ञान हुआ कि मैंने गीता 5 बार पढ़ी हुई थी लेकिन गीता पढ़ने के बाद में मेरे को एक श्लोक याद नहीं था। मुझे ये भी पता नहीं था कि गीता में नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि ये किस उसमें दे रखा है, और जबकि परमात्मा की शरण में आने के बाद में ये सारा मालूम हो गया कि दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में इसको वर्णन दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य कान लिख रहा है उसको 4वें अध्याय के 7वें श्लोक में दिया है ये सारा वर्णन। जब देखा कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा है परमात्मा ने तो 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में उसका सारा वर्णन दिया, और अपनी साधना को भी गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, मेरी ओम नाम की एक भक्ति है केवल, मेरा तो एक ओम मंत्र का जाप है जिसको गीता अध्याय 8 के 13वें श्लोक में कहा है। तो मैंने जब ये सारी चीजें पढ़ ली तो मुझे ये विश्वास हो गया कि वो परमात्मा कोई और बता रहा है जिसको कबीर साहब नाम से जानते हैं। मैंने वो अनुराग सागर में भी ये वर्णन पढ़ा था, लेकिन मैं राधा स्वामी मिशन में जब सत्संग सुनने गया था एक बार, तो वहां किसी व्यक्ति ने, कोई केपी सिंह नाम के डॉक्टर थे, मैं भी प्रैक्टिशनर हूं गांव में तो उनसे संबंध थे, मैं बात कर लेता था, तो उन्होंने कहा था कि कोई परमात्मा एक है और सतगुरु भी इस धरती पर एक ही है। जब उन्होंने उनकी ये किताब मैंने पढ़ ली तब मुझे उनकी ये बात याद आई कि वो कह तो रहे थे कि राजेंद्र जी ही सारे संसार में सतगुरु हैं, लेकिन मुझे यहां याद आया कि राजेंद्र जी को तो कह का भी ज्ञान नहीं था, वो तो अपने गुरुओं की लिखी हुई पुस्तक जिसको जयमल सिंह, सावन सिंह जी उनके नीचे, उसके बाद में कृपाल सिंह, फिर दर्शन सिंह, फिर राजेंद्र सिंह, ये तो पिता पुत्र की गद्दी संभालते हुए इनको वही ज्ञान देते आ रहे हैं जो बाप बेटा एक दूसरे का सीखता है, और इनको अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं है। वो परमात्मा कहते हैं कि वेद कतेब न झूठे भाई झूठे हैं जो समझे नहीं, यानी इन्होंने वेद शास्त्रों का सहारा लेकर और अज्ञान का वो प्रचार किया है, परमात्मा के नाम को डुबाना चाहा, काल की महिमा को इन्होंने उजागर किया इस विश्व के अंदर। इन्होंने राधा स्वामी मिशन के एक हाथरस वहां आगरा में जय गुरुदेव जी हुए हैं मथुरा में, उनकी किताब में भी ऐसी चीज लिखी हुई थी उनकी, परमात्मा की इसमें सुनी कि परमात्मा ने कहा, परमात्मा के बारे में उन्होंने कहा है कि परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, जिसकी शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 में स्पष्ट वर्णन है कि वो परमात्मा धरती पर आ चुका है और वो 20 वर्ष का हो चुका है। तो किसी ने पूछा कि वो कौन है, कि समय आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे सब प्रमाण देखने के बाद में मुझे पक्का दृढ़ विश्वास हो गया, फिर मेरे पास अनुराग सागर, कबीर शबद सागर, कबीर साहब के कई किताब है मेरे पास में, मैंने सारी देखी, और अमृत, कबीर अमृत वाणी, और ये सारी पुस्तकें, फिर गीता के अध्याय 18 के 62 में श्लोक में परमात्मा की शरण में जाने के लिए अर्जुन से कहा है कि मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा, गीता अध्याय 8 के 7 श्लोक में।
वो परमेश्वर कौन है जिसकी शरण में जाने के लिए करें?
वो परमात्मा जिसको यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र नंबर 32 में कबीर अंगारी असी, कबीर बम्भारी असी, जिसको कबीर देव नाम से जाना जाता है, उसको यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र नंबर 1 में अग्नि तनुरसी नाम से कहा है कि वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तेजोमय है, जिसको कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में उसका वर्णन है कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना करके 7वें दिन उस तख्त पे जा विराजा, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव है, जिसको अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर नाम से जाना जाता है।
साधक समाज को, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं सभी अपने भाइयों और बहनों से, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो हम सभी उस परमात्मा की संतान होने के नाते बहन भाई हैं, मैं सभी भक्त समाज को, सभी बहन भाइयों को ये शुभ संदेश देना चाहता हूं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव स्वयं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में धरती पर विराजमान है, उनकी शरण में आए, और 3 धरती पर अवतार ज्ञान गंगा और सचखंड का संदेश पुस्तक है, उनको पढ़ें और इन काल के पंथों से, इन काल के दूतों से अपना छुटकारा करा के परमात्मा की शरण में आकर अपना मोक्ष प्राप्त करें और सारे सुख प्राप्त करें। जो इस संसार में किसी भी संत के पास ना भक्ति मंत्र है ना भक्ति के कोई साधन है, ये तो हठयोग करते हैं, केवल मनमाना आचरण कर रहे हैं, जिसको गीता अध्याय 16 के 23 श्लोक में भी स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होती है, वो व्यर्थ हैं। अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है। तो ये सतगुरुदेव जो हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, ये सारे सदग्रंथों के आधार पर भक्ति कराते हैं, और इस धरती पर, इस पावन भूमि पर, इन सतगुरु के सिवा इस विश्व के अंदर कोई भी सतगुरु नहीं है जो सत का ज्ञान दे।
जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
सत्सा